लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रत्येक बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति अपने जीवन आचरण द्वारा सुसमाचार का साक्ष्य प्रस्तुत करे तथा प्रभु ख्रीस्त के प्रेम संदेश को जन जन में फैलाने के मिशन के प्रति वचनबद्ध रहे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय है रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हमारे जीवन में बहुत सारी मांगे और चाहते हैं। अपने जीवन की मांगों और चाहतों की याद करते हुए यदि हम विगत रविवार के सुसमाचार पाठ की याद करें तो यह हमें उस धन युवक की याद दिलाएगा जो अनंत जीवन पाने की इच्छा में यीशु के पास आया था। आज के सुसमाचार में हम दो शिष्यों को एक अन्य विशेष चाह के साथ यीशु के पास आते देखते और उन्हें अपने हृदय की बात को व्यक्त करते हुए सुनते हैं। आइए हम 29वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने दिल में व्याप्त बातों की थाह लें कि हम किस मांग को लेकर यीशु के पास आते हैं, हम क्या चाहते हैं कि वे हमारे लिए क्या करें, वह कौन सी बात है जिसे हम बिना हिचकिचाहट के साथ उनके पास आते और पूरा करने की मांग करते हैं। वहीं यीशु हमें कैसा उत्तर देते हैं, वे हमसे क्या कहते हैं।
जबेदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण चाह को जानने, पहचानने और समझने में मदद करे, जिससे हम उसे यीशु के पास रख सकें और वे उसे हमारे लिए अपनी प्रेमपूर्ण उदारता में पूरा करें। श्रोताओ, नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए पिता ईश्वर की चाह को व्यक्त करता है, जिसे वे अपने बेटे यीशु ख्रिस्त में सारी मानवता के लिए पूरा करने की एक असीम चाह रखते हैं। दुनिया का कौन ऐसा पिता है जो अपने निज बेटे को घोर दुख सहते और क्रूस पर मरते हुए देखने की चाह रखता हो। कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटे के लिए असहनीय कष्ट निर्धारित करता और उसे पूरा करने की चाह रखता है। जी हाँ श्रोताओं, जीवन देने वाले हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए वे प्रेमी पिता हैं, जो अपने बेटे को दुनिया में भेजते हुए सारी मानव जाति के लिए इस चाह को पूरा करते हैं। इसाईस नबी के ग्रंथ का अध्याय 53 जो पीड़ित और शोकित ईश सेवक की मनोदशा व्यक्त करता है, जहां हम मुक्तिदाता यीशु के जीवन पर चिंतन करने हेतु बुलाए जाते हैं। यीशु ख्रिस्त का दुनिया में मानव बनकर आना हमारे लिए पिता ईश्वर के मुक्ति विधान को प्रकट करता है। पिता अपने बेटे को दुनिया में इसलिए भेजते हैं कि वे सारी दुनिया को पाप और मृत्यु से बचा सकें। यीशु का प्रेरित कार्य यही था, जिसके मुताबिक उन्हें दुख सहना, क्रूस उठाना और उसी क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाना था। पाप का शिकार होते हुए घोर पीड़ादायक मृत्यु का आलिंगन कर उन्होंने हमें पाप और मृत्यु से मुक्त किया। उन्होंने यह इसलिए किया क्योंकि वे पिता के प्रेम और आज्ञाकारिता में दृढ़ बने रहे। पिता के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्होंने उस दुख भरे प्याले को पीना स्वीकार किया, जिसे पिता ने उनके लिए निर्धारित किया था। हमारी तरह ही मानव बनकर उन्होंने हमारे सारे दुख कष्टों को अपने ऊपर ले लिया, जिससे हम अपने दुख तकलीफों और घोर कष्टों से निजात पा सकें। अपने पिता की इच्छा पूरी करने में उन्होंने हमारी तरह ही दुख, दर्द, भय और निराशा का अनुभव किया, परंतु उन्होंने नम्रता और दीनता का पाठ सीखते हुए सारी चीजों को स्वीकार किया तथा स्वयं बलि बेदी, बलि का मेमना और महापुरोहित के रूप में हमारे लिए मुक्ति का बलिदान बन गए। श्रोताओं, इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे लिए उन्हें महापुरोहित के रूप में निरूपित करता है, जो स्वर्ग से धरती पर उतरे, जिससे वे इस धरती पर निवास करने वालों को स्वर्ग अपने पिता के निवास स्थल की ओर ऊपर उठा ले जा सकें। उन्होंने अपने प्रेम का प्रेमपूर्ण बलिदान चढ़ाते हुए अपने इस प्रेरित कार्य को पूरा किया, जिसके लिए पिता ने उन्हें अपने दाहिने एक राज्य सिंहासन प्रदान किया है, जिसकी घोषणा हम अपने धर्म सार में करते हैं। श्रोताओ, हम उसी मुक्तिदाता की ओर अपनी निगाहें और अपनी प्रार्थना रूपी अर्जी विनती उठाने हेतु आमंत्रित किए जाते हैं, जो पाप को छोड़कर सारी चीजों में हमारी तरह ही बन गए। वे हमारी बातों, इच्छाओं और हमारी सारी भावनाओं को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि एक मानव के रूप में उन्होंने स्वयं उन सारी बातों का अनुभव अपने में किया। यदि हम विश्वास और साहस के साथ उनकी ओर फिरते और उनसे अपनी अर्जी विनती करते, तो वे निश्चय ही हमारी सुनते और हमारी मांगों को पूरा करते हैं। श्रोताओं, विश्वास और दृढ़ता से जेबेदी के दो पुत्र यीशु के पास आते और अपनी मांगों को रखते हैं, जिसे हमने सुसमाचार में सुना। उनकी मांग के उत्तर में यीशु उन्हें उस प्याले को पीने और वह बपतिस्मा लेने की बात कहते हैं, जिसे उन्होंने स्वयं पिया और लिया। श्रोताओ, यहाँ मांग की पूर्ति हमें कार्यों के लिए आह्वान करती है, जिसके अनुरूप पिता हमें फल प्रदान करते हैं, क्योंकि जिस भांति पिता ने बेटे को अपने कार्यों के निर्वाहन हेतु धरती में भेजा, वे हमें उन्हीं कार्यों को करने हेतु जीवन का वरदान देते हैं। वही मुक्तिदाता यीशु हमें अपने कार्यों को करने का तरीका बतलाते हैं, जो दुनिया की रीत से एकदम भिन्न है। हम अपनी नम्रता और दीनता में अपने को दूसरों के लिए प्रस्तुत करने हेतु बुलाए जाते हैं, जैसे कि स्वयं यीशु ख्रिस्त ने किया है। आज हमें सबसे बड़ा नहीं अपितु दीनता में सबका सेवक बनने का निमंत्रण दिया जाता है। आइए हम यीशु ख्रिस्त से निवेदन करें कि हम पवित्र आत्मा की कृपा में सेवक होने के मनोभावों को जान सकें, जिससे हम अपने जीवन को दूसरों के लिए नम्रता में जी सकें, जो हमें स्वर्ग में ईश्वर के दाहिने और बाएं विराजने के अधिकारी बनाएगा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने 16 अक्टूबर को आत्मा की आवाज सुनने और एक दूसरे को सुनने हेतु प्रेरित करते हुए ट्वीट किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, आत्मा हमें हर एक कलीसिया, लोकधर्मी और राष्ट्रों के सवालों, चिंताओं एवं आशाओं को सुनने के लिए प्रेरित करता है और हमें दुनिया को चुनौतियों एवं परिवर्तनों को सुनना है जिसको वे हमारे सामने रखते हैं। हम अपने हृदय को ध्वनि रहित साउंड प्रूफ न बनाएं, आइए हम एक दूसरे को सुनें। और संत पापा फ्रांसिस 12 नवंबर को असीसी शहर जाएंगे और गरीबों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। संत फ्रांसिस के शहर असीसी में संत पापा फ्रांसिस की गरीबों से मुलाकात व्यक्तिगत होगी, जहां वे 14 नवंबर गरीबों के लिए विश्व दिवस की तैयारी हेतु पूरे यूरोप के करीब 500 लोगों के बीच सुनने और प्रार्थना के कार्यक्रम में भाग लेंगे। गरीबों के लिए विश्व दिवस के द्वारा संत पापा जागरूकता लाना चाहते हैं और सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे गरीबों की पुकार सुने। इस साल की विषय वस्तु है, गरीब हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। गरीबों के लिए विश्व दिवस की स्थापना करुणा की असाधारण जयंती के अवसर पर अपने प्रेरितिक पत्र मिसेरी कोर्दिया एत मिसेरा प्रकाशित करते हुए 20 नवंबर 2016 को की थी। नवीन सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धर्म पीठीय परिषद द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि संत पापा इटली के उम्ब्रिया प्रांत के केंद्र में स्थित छोटे शहर में व्यक्तिगत रूप से जाएंगे और दूतों की संत मरिया महागिरजा घर में पूरे यूरोप के गरीब लोगों के एक दल से मुलाकात करेंगे। यह असीसी में संत पापा की 5वीं मुलाकात होगी। इससे पहले उन्होंने 4 अक्टूबर 2013 को वहां की यात्रा की थी। 4 अगस्त 2016 को संत पापा असीसी के संरक्षक की 8वीं शताब्दी मनाने गए थे। 20 सितंबर 2016 को उन्होंने शांति के लिए विश्व प्रार्थना दिवस का संचालन किया था और 3 अक्टूबर 2020 को उन्होंने असीसी में प्रेरितिक विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती पर हस्ताक्षर किया था। उधर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक को एक संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि हमें लोगों और पृथ्वी की भलाई के लिए भोजन के उत्पादन और उपयोग के तरीकों को बदलने हेतु नवीन समाधानों को अपनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के महानिदेशक क्वो डोंग्यू को संबोधित संदेश में संत पापा ने लिखा, विश्व खाद्य दिवस का वार्षिक उत्सव हमें मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक को सामने लाता है। एक बार और सभी के लिए भूख पर काबू पाना एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अपने संदेश में संत पापा ने विश्व खाद्य दिवस के लिए इस वर्ष की थीम हमारे कार्य हमारे भविष्य हैं, बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन सम्मिलित कार्यवाही की आवश्यकता को रेखांकित करता है, ताकि हर किसी को ऐसे आहार मिल सके जो अधिकतम पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं और पर्याप्त एवं किफायती भी हैं। संत पापा फ्रांसिस भोजन की पहुंच के संबंध में एक विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं, यह देखते हुए कि 3 अरब से अधिक लोगों के पास पौष्टिक आहार नहीं है, लगभग 2 अरब लोग खराब आहार या एक गतिहीन जीवन शैली के कारण अधिक वजन वाले हैं। संत पापा इस पर जोर देते हुए लिखते हैं कि हर किसी की भूमिका है, यदि हम अपने ग्रह और पूरी आबादी के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं, तो हमें सभी स्तरों पर परिवर्तनों में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए और समग्र रूप से खाद्य प्रणालियों को पुनर्गठित करना चाहिए। संत पापा ने 4 क्षेत्रों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जहां तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है, खेतों में, समुद्र में, मेज पर और भोजन की हानि एवं बर्बादी को कम करने में। यद्यपि व्यक्तिगत जीवन शैली विकल्प और दैनिक उपयोग प्रथाएं वैश्विक और पर्यावरणीय गतिशीलता को प्रभावित करती हैं, उन्होंने कहा, हमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं को नैतिक और टिकाऊ विकल्प बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और भूख के बिना दुनिया को एक वास्तविकता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में युवा पीढ़ियों के बीच जागरूकता बढ़ाएं। संत पापा कहते हैं कि महामारी के साथ पाठ्यक्रम बदलने का अवसर है, ताकि वैश्विक खाद्य प्रणाली भविष्य के संकटों का जवाब देने में बेहतर हो सके। भूख के खिलाफ लड़ाई के लिए बाजार के ठंडे तर्क पर काबू पाने की जरूरत है, जो कि केवल आर्थिक लाभ और सिर्फ एक अन्य वस्तु के लिए भोजन की कमी पर केंद्रित है, और इसके बजाय एकजुटता के तर्क को मजबूत करना चाहिए। उधर कोविड से बेहतर के लिए उभरना पर 2 दिवसीय सम्मेलन इंग्लैंड और वेल्स में पुरोहितों के सतत प्रशिक्षण हेतु जिम्मेदार लोगों के लिए आयोजित किया गया था। संत पापा फ्रांसिस ने बार बार दोहराया है कि वर्तमान कोविड संकट ने हमारे लिए कई अन्य संकटों को प्रकट किया है जो कोविड के पहले मौजूद थे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि हम या तो बेहतर उबर सकते हैं अथवा बदतर, किंतु पहले के समान नहीं रह सकते। जब लॉकडाउन के दौरान प्रेरितिक कार्य रुक गया था, तो पुरोहितों ने एक खास संकट को महसूस किया जिसने उनकी पहचान को ही प्रभावित कर दिया। सम्मेलन 3 भागों में आयोजित था। वाटिकन के संचार विभाग से सिस्टर बेर्नाडेट ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कलीसिया और समाज के व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में वर्तमान वैश्विक संकट का संदर्भ प्रस्तुत किया। उन्होंने अवगत कराया कि कलीसिया ने अतीत में संकटों का जवाब कैसे दिया है। दूसरे भाग के गोलमेज बहस में सम्मेलन के प्रतिभागियों ने पुरोहितों द्वारा सामना किए जा रहे मामलों और संकटों पर बहस किया। तीसरे भाग में उन्होंने इन संकटों और मामलों का जवाब देने के लिए निमंत्रण दिया, ताकि पुरोहित इन संकटों और चुनौतियों से ऊपर उठ सकें। और परम धर्म पीठ ने ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा आयोजित प्रवासियों की तस्करी पर एक कार्य समूह की बैठक में भाग लिया। परम धर्म पीठ ने ब्लॉकचेन मंच के माध्यम से अनियंत्रित भुगतान और प्रवासियों की तस्करी में क्रिप्टोकरेंसी के अनियंत्रित उपयोग की खतरनाक भूमिका पर चिंता व्यक्त की है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।